तुम पर या तुम्हारे कैरेक्टर पर शक नहीं कर रहा मैं। अगर तुम्हारी पवित्रता पर विश्वास ना होता तो आज तुम मेरी पत्नी के अधिकार से इस घर में और इस कमरे में नहीं रह रही होती। शान ने बहाने से उसके मन को टटोलना चाहा, पर उसकी उदासी देखते हुए बात बदल सी दी, उसको बेहतर फील करवाने की कोशिश की। उसके आंसू आज उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो उसको चुप करवाना चाहता था, पर कैसे करे समझ नहीं आ रहा था। आरवी ने खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर उसकी तरफ निगाहें उठाते हुए बोली, सही कहा आपने। आज तक बहुत से लड़के टकराए हैं मुझसे, पर सबको इस चेहरे से प्यार होता था, इस जिस्म को पाने की चाह होती थी, इसलिए कभी किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया मैंने। कोई होता जो मेरी रूह को पसंद करता, मुझे चाहता ना कि मेरे जिस्म को, तो ज़रूर नज़र उठाकर देखती उसे। पर आज की दुनिया में जिस्म के पुजारी बहुत मिलते हैं, पर वो आत्मा को अपना बनाने चाहे ऐसा कोई विरला ही मिलता है। विहान भी उन्हीं में से एक था जिसे मुझे हासिल करना था, इसलिए नहीं क्योंकि उसे मुझसे मोहब्बत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि पहली नज़र में उसका दिल मेरे चेहरे पर आ गया था। मेरे जिस्म को हासिल करने का जुनून सवार था उस पर। उसने बहुत कुछ किया पर नहीं हासिल कर पाया मुझे। मेरी कुछ मजबूरियां थी जो मैं उसकी सच्चाई जानते हुए उससे शादी करने को तैयार हुई, और मैं आपकी शुक्रगुजारी हूं कि आपने मुझे उसके साथ उस जबरदस्ती के रिश्ते में बंधने से बचा लिया। कम से कम यहां मैं सुरक्षित तो हूं। अगर उसके साथ होती तो वो कब का मेरे साथ जबरदस्ती करके अपना हक जताकर मेरी इज्जत लूट चुका होता। यही तो चाहिए था उसे, और उसे वो मिल जाता। उसके हाथ का खिलौना बन जाती मैं, चाहकर भी उससे खुद को बचा नहीं पाती। मेरे दिल में कभी उसके लिए कुछ नहीं था। आपसे पहले मेरा किसी लड़के से कोई रिश्ता नहीं रहा। मैंने आपके अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा है, कभी किसी को यूं नहीं देखा है, कभी किसी के साथ इतना सेफ फील नहीं हुआ। आप अलग हैं सबसे। आपको लेकर दुनिया चाहे जो कहे, पर मेरे लिए आप बहुत अच्छे हैं, और मैं बस इतना चाहती हूं कि आप मुझ पर यूं शक ना करें। इतना कहकर आरवी उससे दूर हट गई। उसने टेबल पर ट्रे रखी और बाहर जाते हुए बोली, इससे पहले कि कॉफ़ी ठंडी हो जाए पी लीजिएगा। इतना कहकर उसने अपनी हथेली से अपने आंसुओं को पोंछा और वहां से चली गई। शान कुछ देर तक उसकी कही बातों के बारे में सोचता रहा। उसकी आंखों में सच्चाई, दर्द, बेबसी देखी थी उसने। शान ने अब खुद से ही कहा, मतलब कुछ तो है, तुमने मजबूरी में उससे शादी के लिए हाँ कहा। मतलब वो किसी बात के लिए तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, जैसे उस दिन मैसेज में धमका रहा था। पर अगर तब तुम मजबूर थी तो अब इतनी रिलैक्स कैसे हो? अगर किसी बात के लिए उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया था तो वो तो अब भी कर सकता है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या राज है। उसने अपने बालों में हाथ घुमाया और टेबल के पास जाकर कॉफ़ी लेकर उसको सोचने लगा। उसको मीटिंग का ध्यान आया तो जल्दी से रेडी हो गया। कुछ देर बाद आरवी वापस आई, पर तब शान मीटिंग में था। आरवी ने एक नज़र उसे देखा। शान ने भी निगाहें घुमाई, पर आरवी ने उससे निगाहें मिलते ही निगाहें फेर ली और बिना कुछ कहे अंशु के पास चली आई। उसने अंशु को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और उसको रेडी करने लगी। उसने अंशु को समझा दिया था कि कोई आवाज़ ना करे, इसलिए अंशु एकदम चुप थी। शान मीटिंग में बिजी था, बीच बीच में उन्हें भी देख ले रहा था। कुछ देर बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और अंशु को देखकर मुस्कुराकर बोला, क्या बात है, आज तो हमारा बच्चा एकदम शांत है। उसका सवाल सुनकर आरवी और अंशु दोनों ने उसे देखा। बंद लैपटॉप देखकर आरवी समझ गई कि मीटिंग खत्म हो गई है। उसने उस पर से अपनी निगाहें हटा ली, जिसे शान ने भी महसूस किया। वहीं उसका सवाल सुनकर अंशु ने एकदम सीरियस होकर कहा, मम्मा ने कहा डैडी इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, इसलिए बिल्कुल आवाज़ नहीं निकालनी, इसलिए अंशु चुप है। उसकी बात सुनकर शान की निगाहें आरवी की तरफ घूम गई, जो उसको देख भी नहीं रही थी, शायद नाराज थी उससे। आरवी वहां से कबर्ड की तरफ चली आई। शान ने अंशु को देखा और अपनी बाहों को फैलाकर उसको मुस्कुराकर अपने पास आने का इशारा कर दिया। अंशु तुरंत स्टूल पर से उतर गई और डैडी पुकारते हुए उसकी तरफ दौड़ गई। आवाज़ सुनकर आरवी ने पलटकर उसको देखा और उसको भागते देख घबरा कर बोली, संभल कर बेटा। अंशु जाकर शान से लिपट गई। दोनों बाप बेटी ने एक साथ उसे देखा और मुस्कुरा दिए। आरवी ने निगाहें फेर ली, कबर्ड से अंशु की टाई निकाली और उसके पास चली आई। शान अंशु से कल के बारे में पूछ रहा था और उसकी गोद में बैठी अंशु उसको सब बता रही थी कि कल सारा दिन उसने क्या किया। तभी आरवी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने शान को देखा तक नहीं। अंशु को देखते हुए बोली, अंशु बेटा इधर आइए, पहले मम्मा आपको रेडी कर दे, उसके बाद आप अपने डैडी से बात कर लीजिएगा। मम्मा को आपका बैग भी पैक करना है, फिर नीचे भी काम है। उसकी बात सुनकर अंशु शान की गोद से उतरकर उसके पैरों से लिपट गई। आरवी के लबों पर मुस्कान फैल गई। उसने उसको अपना गोद में उठाया और प्यार से उसके चेहरे को चूम लिया। फिर उसको वापस ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा किया, टाई पहनाई, आईडी कार्ड भी पहनाया, उसके बाद सॉक्स और शूज पहनाकर उसको नीचे उतार दिया।
अंशु वापस जाकर शान की गोद में बैठ गई। आरवी उसका बैग पैक करने लगी। शान अंशु की बात सुनते हुए उसे भी बीच बीच में देख ले रहा था। आरवी ने बेडशीट ठीक की, फिर अंशु का बैग उठाते हुए बोली, अंशु स्कूल के लिए लेट नहीं होना है आपको, जल्दी से नीचे आइए। यस मम्मा, अंशु ने मुस्कुराकर कहा और शान को देखने लगी। शान उसकी बात समझते हुए उसे अपनी बाहों में उठाकर खड़ा हो गया और आरवी के पीछे पीछे चल दिया। ब्रेकफास्ट के बाद तीनों स्कूल के लिए निकल गए। सारे रास्ते आरवी अंशु को समझा रही थी और वो भी ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। शान का ध्यान भी वहीं था। गाड़ी स्कूल के सामने रुकी तो अंशु ने शान को किस करके उसको बाय किया। शान ने भी प्यार से उसके गाल को चूम लिया। फिर अंशु आरवी को देखकर बोली, मम्मा आज भी आप बेबी को लेने आएंगे ना? उसकी बात सुनकर आरवी के कुछ कहने से पहले ही शान ने हैरानी से कहा, तुम कल अंशु को लेने आई थी? आरवी ने उसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और प्यार से अंशु के गाल को छूकर बोली, आप चाहती हैं मम्मा आज भी आपको लेने आए? यस, अंशु ने क्यूट सी शक्ल बनाकर कहा। आरवी ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, ठीक है तो मम्मा रोज आपको लेने आएंगी, हैप्पी? यस, अंशु ने चहकते हुए जवाब दिया और उसके गाल पर किस कर दिया। आप हमें छोड़कर जा सकते हैं, अंशु को छोड़ने के बाद मैं खुद से घर चली जाऊंगी, आरवी ने बिना शान को देखे ही कहा और अंशु को लेकर बाहर निकल गई। शान हैरानी से उसको देखता ही रह गया। आरवी अंशु को अंदर छोड़कर आई। शान की गाड़ी अब भी वहीं खड़ी थी पर आरवी ने उसको अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गई। ये देखकर शान के भाव एकदम से सख्त हो गए। उसने स्टेयरिंग पर अपनी पकड़ कस दी और गुस्से में जबड़े भींचते हुए गाड़ी उसके पीछे बढ़ा दी। उसने पीछे से हॉर्न दिया पर मजाल हो जो आरवी रुकी हो, उसने तो मुड़कर उसको देखा तक नहीं और आगे कॉर्नर पर जाकर टैक्सी का इंतजार करने लगी। शान ने भी गाड़ी रोकी, फिर उसकी तरफ का दरवाजा खोल दिया और उसकी तरफ छुपते हुए कड़क आवाज में बोला, आरवी अंदर आकर बैठो। आरवी ने मुंह घुमा लिया और थोड़ा और आगे जाकर खड़ी हो गई। शान की आंखें गुस्से से छोटी छोटी हो गई। उसने एक बार फिर उसके सामने गाड़ी रोकी और उसको बैठने को कहा पर आरवी ने अब भी नहीं सुना और ऑटो रोककर उसमें बैठने लगी। शान ने यह देखा तो आंखें गुस्से से जल उठी। वो जल्दी से गाड़ी से निकलकर बाहर आ गया। आरवी ऑटो में बैठी ही थी कि शान ने उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर खींच लिया और ऑटो वाले को गुस्से से घूरा तो बेचारे की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। वो तुरंत ही वहां से निकल गया।
आरवी ने यह देखा तो उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से से बोली, क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए मेरा। मैं क्या कर रहा हूँ? तुम बताओ ये क्या नाटक लगाया हुआ है सुबह से? सुबह की छोड़ो, अभी की ही बात ले लो। मैं स्कूल के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था पर तुम वहां से पैदल निकल आई। इतनी देर से तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ, अंदर बैठने को कह रहा हूँ पर तुम मेरी बातों को इग्नोर कर रही हो। शान उस पर गुस्से में भड़क उठा। आरवी भी भला क्यों पीछे रहती, उसने भी उसी लहजे में जवाब दिया, हाँ कर रही हूँ इग्नोर। मैंने तो पहले ही कहा था ना कि आप चले जाइएगा, तो क्यों रुके आप? मैं तो खुद से घर जा रही थी ना, फिर क्यों आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे? नहीं बैठ रही आपकी गाड़ी में, नहीं सुन रही आपकी कोई भी बात। तब भी आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे ना आपसे कोई बात करनी है और ना ही आपके साथ कहीं जाना है। आप जाइए यहाँ से, मैं खुद से घर चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर शान का पारा हाई हो गया। वो गुस्से से चिल्लाने ही वाला था कि उसकी निगाहें वहां खड़े लोगों पर पड़ी। सब उन्हें ही देख रहे थे। ये देखकर शान उसकी कलाई थामे हुए ही गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आरवी जाने से इनकार करने लगी और उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो शान उसकी तरफ मुड़ गया और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से पर धीमी आवाज में बोला, अब और नाटक नहीं चाहिए मुझे। लोगों के सामने अपना और मेरा तमाशा बनाना बंद करो और चुपचाप चलकर गाड़ी में बैठो। याद रखो, अगर अभी तुम मेरे साथ नहीं गई तो मेरे घर में दोबारा कदम भी नहीं रखने दूंगा मैं तुम्हें। उसने उसको धमकी दी और हाथ छोड़कर जाकर खुद गाड़ी में बैठ गया। आरवी नाराज तो थी पर वो ऐसा कुछ कह देगा इस बात का अंदाजा नहीं था उसे। वो आंखें फाड़े और मुंह खोले उसको देखती ही रह गई और शान वहां से चला गया। उसने आरवी के सामने गाड़ी रोकी और उसके तरफ का दरवाजा खोलते हुए हॉर्न बजा दिया जिससे आरवी होश में लौट आई। बैठती हो या जाऊं? शान ने उसको यूं ही खड़े देखकर गुस्से से सवाल किया। आरवी ने उसे देखा तो उसी को घूरे जा रहा था। उसको शान की धमकी याद आई और वो गुस्से में अंदर बैठ गई, फिर जोर से दरवाजा बंद कर दिया जैसे तोड़ ही देगी। शान कुछ नहीं बोला, गाड़ी स्टार्ट कर दी। टू बी कंटिन्यूड। कैसी लग रही है आपको स्टोरी? लाइक एंड कॉमेंट करके बताइए।